प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 3 दिनों से आपने अलग अलग विषयों पर डेली ऑडियो लेक्चर सुना है, जिसमें एक में हम लोगों ने भारत में जाति व्यवस्था के बारे में बात की थी, सेकेंड लेक्चर में हमने टाइम जोन को लेकर चर्चा की थी, और उसके बाद यानी कि ठीक इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ बातें जानी थी। मुझे पूरा यकीन है कि अब चूंकि आप थोड़े से नए पैटर्न पर डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, जिसमें एक विषय उठाया जाता है और उसी विषय पर कुछ बातें की जाती हैं, डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक ही विषय पर फोकस्ड तरीके से बातें की जाती हैं तो उसका असर तो थोड़ा सा अलग होता ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो डेली ऑडियो लेक्चर का जो स्ट्रक्चर है शुरू से लेकर अब तक तो काफी बदल चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि वो करेंट पर आधारित होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें हम लोग रेडियो न्यूज की चर्चा करते हैं, अखबारों की चर्चा करते हैं, दूरदर्शन के न्यूज की चर्चा करते हैं, या और भी कुछ अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका जो आधार है, जो बेस है, वो बहुत व्यापक है, ज्यादा उपयोगी है। लेकिन मित्रों, उसका मतलब यह नहीं कि अभी जबकि हम एक टॉपिक को लेकर के बात कर रहे हैं तो किसी भी मायने में वह कम उपयोगी है। ऐसा आपको मुझे विश्वास है कि नहीं लग रहा होगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आप सब मेल लिख रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं चूंकि अभी अपने स्टूडेंट्स के साथ बिजी हूं तो मैं मेल आपके नहीं देख पा रहा हूंगा। ऐसा नहीं है, मेल मैं देखता ही देखता हूं, क्योंकि मेल इकट्ठे देखने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं मेल आपके द्वारा जो लिखे जा रहे हैं लगातार देखता हूं, रोजाना बेसिस पर देखता हूं, क्योंकि उससे मेरे अंदर वो एक परत सी जमती चली जाती है कि हाँ, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। अंततः ये क्लासेस खत्म होनी है और फिर से इस डेली ऑडियो लेक्चर को अपने पुराने पैटर्न पर आना ही आना है। तो मेरे दिमाग में वो सारी बातें होनी चाहिए कि मुझे अब इसे किस रूप में शुरू फिर से करना है। तो डेफिनेटली मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप मेल लिखना बंद न करें। आपके अपने जो भी विचार हों आप मुझे उससे अवगत कराएं, और ये मानकर अवगत कराएं कि आपकी बात उसी दिन मेरे पास पहुंच गई है और मुझे मेल से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें मैं बकायदे नोट कर लेता हूं, और इन सब का फिर सकारात्मक जो प्रभाव होगा, या यूं कह लीजिए कि सकारात्मक जो उत्तर होंगे, वो आपको फिर जब हम रूटीन के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में आ जाएंगे तो उसमें देखने को मिलेंगे, जानने को और सुनने को मिलेंगे। तो मित्रों, इस रिक्वेस्ट के बाद आइए आज मैं आपको विषय के बारे में सबसे पहले बता दूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टार्टअप पर। स्टार्टअप, ये शब्द आपने सुना है। अब तो मुझे लगता है कि शायद यंग जनरेशन आपस में बातचीत करते हुए भी स्टार्टअप शब्द का प्रयोग करती है, और मैंने महसूस किया है कि खासकर मेरे जो बैचमेट्स हैं और या थोड़े से जूनियर हैं, जब उनसे कभी फोन पर बात होती है और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये तो नहीं कहता कि सभी ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 20% का तो जवाब यही होता है कि उसने स्टार्टअप शुरू किया है, स्टार्टअप में है। यानी कि धीरे धीरे मैं ये मान रहा हूं कि स्टार्टअप जोर पकड़ता जा रहा है, राइट? और चूंकि करंट अफेयर्स का हिस्सा इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी बात की जानी चाहिए, और इसको शुरू हुए अब लगभग 3 साल होने भी जा रहे हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा स्टार्टअप पर बातें करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम स्टार्टअप कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, स्टार्ट शब्द से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज शुरू की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बीच बीच में अपने भाषण में ये कहते हैं कि आप नौकरी मांगने वाला मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए, मतलब उद्यमी बनिए, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी जनरेट करने वाले बने, नौकरी उत्पन्न करने वाले बने, राइट? तो क्या नौकरी उत्पन्न करने वाला ही स्टार्टअप कहलाता है, क्योंकि उसने स्टार्ट किया है? और इसी को ध्यान में रखकर के आपको मालूम है कि स्टार्टअप इंडिया योजना बाकायदे शुरू की गई, स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई है। लेकिन ये एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला भी है, ये सीधे सीधे कोई भी रोजगार शुरू कर देने से नहीं है। इनफैक्ट फ्रेंड, जब हम कहते हैं कि स्टार्टअप, तो उसका मतलब आप ये मान करके चलिए कि एक ये ऐसा उद्यम है, उद्योग तो मैं नहीं कहूंगा, एक ऐसा एक उद्यम है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक ऐसा काम है, सरल भाषा में कह लीजिए एक ऐसा काम है जो बिल्कुल एक नए तरह का है, एक और बेसिकली ये सर्विस सेक्टर की चीज है। आप सेवा उपलब्ध कराते हैं, आप कोई चीज पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई फैक्ट्री लगा दी और उसमें मैंने किसी चीज का उत्पादन शुरू कर दिया है, नॉट एट ऑल, ये सर्विस सेक्टर की चीज है। मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, पहली बात, एक तो बिल्कुल नया है, मतलब जो मान लीजिए कि 20 साल पहले जो कोई किसी ने कुछ शुरू किया है और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही शुरू कर दिया, तो सामान्यतः वो स्टार्टअप नहीं है, मतलब बिल्कुल नया। जो स्टार्ट, शुरू शब्द है, स्टार्ट यानी कि शुरू, तो एकदम नए से शुरू, मतलब कोई एक नई चीज में लेकर के आ गया हूं, पहली बात एक नई हो। दूसरा है कि वो सर्विस सेक्टर का है, इनफैक्ट अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर से ही जुड़ गया है, और जो सर्विस सेक्टर से है और उसके लिए वो एक फोरम उपलब्ध करा रहा है, एक मंच उपलब्ध करा रहा है। देखिए, मैंने कहा कि मैं उत्पाद नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो उद्योग से इसका संबंध नहीं है। आप हो सकता है कि चीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक उत्पाद प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस के फॉर्म में भी, जैसे चलिए अब इसको उदाहरण से देखें कि ओला ले लीजिए या उबेर ले लीजिए, उबर जो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अब आप देखें कि वहां टैक्सी है लेकिन बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग जो आना जाना चाहते हैं उनको टैक्सी उपलब्ध हो जाए, और वो टैक्सी उपलब्ध हो जाए उसके लिए उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है, टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम बना लिया है। आप बकायदे अपने फोन से ही उनके वेबसाइट पर जाकर के आप ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे मतलब अपनी जरूरत वहां दर्ज करा सकते हैं, और फिर आपके पास वो टैक्सी आ जाएगी। सारा का सारा अपना एक सिस्टम उन्होंने बना दिया है, तो आप देखिए कि वो अलग तरीके से आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कॉफी भी आपको पिला रहे हैं और दूसरी चीजें भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो सर्विस और उत्पाद को आप इस रूप में देखिए, बस उद्योग से उसे थोड़ा सा आप किनारे कर दीजिए, है ना। मामला थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है, तो मैं आपके दिमाग में बस एक उसे स्पष्ट करना चाह रहा हूं। तो नई चीज है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ उत्पाद प्रोवाइड कर रहा है, या एक फोरम उपलब्ध करा रहा है, एक मंच उपलब्ध करा रहा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अपना पुराना सामान बेचना है, तो पुराना सामान बेचने के लिए अपनी एक वेबसाइट बनी हुई है, आप वहां पुराना सामान बेच लीजिए, है ना। तो इस तरह ये स्टार्टअप के द्वारा ही शुरू किया गया है, और बेसिकली ये जो स्टार्टअप है ये कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा काम करती है ना। ये धीरे धीरे एक इसका फॉर्मेट इस तरह का बन गया है। तो आप यूं कह लीजिए कि अगर हम इसे पारिभाषिक रूप में कहना चाहें तो आप कह लीजिए दोस्तों कि यह मूलतया इंटरनेट पर आधारित तकनीक से किया गया एक नवाचार है। इंटरनेट पर आधारित तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है उससे की गई एक नई कोशिश है जो मार्केट की जरूरतों को पूरा करता है। मार्केट की जरूरत का मतलब ही होता है कि जो उपभोक्ता जो चाह रहे हैं उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये उद्योग उस तरीके का नहीं है, राइट। अब आप देखिए कि फ्रेंड, जब कोई भी स्टार्टअप शुरू करता है, आप ज्यादातर पाएंगे कि इसमें यंग जनरेशन ही के लोग हैं, ज्यादातर युवा लोग हैं, युवा लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं, तो इसके सामान्यतया तीन चार स्टेजेस होते हैं। पहला तो यह है कि आप जो जोखिम होते हैं इसमें, जो रिस्क होते हैं, तीन चार रिस्क की हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि जिस सेक्टर में आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या जो वस्तु प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वस्तु है कैसे आप उसको कम से कम कीमत पर अपने उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, जब तक उसकी कीमत कम नहीं होगी तब तक ये मानकर चलिए कि उसको खरीदने की उत्सुकता पैदा नहीं होगी कस्टमर में। देखिए, वो चीज पहले भी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब ये फ्लिपकार्ट शुरू हुआ तो फ्लिपकार्ट ने जो किताबें होती हैं वो उपभोक्ताओं को 50% रिबेट पर देना शुरू किया, 50% रिबेट पर देना। अब 100 रुपए की किताब उपभोक्ता को 50 रुपए में मिल रही है, तो लोगों में बड़ी उत्सुकता पैदा होगी, उन्होंने मंगाना शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फ्लिपकार्ट कमा रहा होगा, उसमें बहुत तो नुकसान उठा रहा था, उसमें बहुत नुकसान उठा था। अब ये एक अलग मुद्दा है कि कोई नुकसान उठा करके क्यों इस तरह का बिजनेस करता है। अब वो आपको 50% में नहीं दे रहा है, तो वो अपने ग्राहकों को खींचने के लिए, ग्राहकों में उत्सुकता पैदा करने के लिए, और इसी हिसाब और इसी प्रोसेस में उसको उसका ये भी टेस्ट हो जाता है कि इस चीज की इसको जरूरत है कि नहीं है लोगों को। तो पहला तो है कि आपको वस्तु की लागत, उसकी गुणवत्ता, और ये देखते हुए कि इसकी लोगों को जरूरत है या नहीं है, उसकी कीमत कम करके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो दूसरा जो जोखिम होता है फ्रेंड, जो सबसे बड़ा जोखिम है, वो मार्केट का है, यानी कि ग्राहक का है, कि आपके पास अब आपकी इस सर्विसेज को लेने के लिए, आपके इस प्रोडक्ट को लेने के लिए सफिशिएंट कस्टमर हैं या नहीं है। अगर कस्टमर नहीं होंगे तो फिर आप करेंगे क्या? मतलब अगर मैं अपने दिमाग में सोच लेता हूं कि ये चीज बहुत ज्यादा बिकेगी, खरीदी जाएगी, और नहीं बिकती है तो क्या हाल होगा? तो इस पर भी बकायदे फुल प्रूफ स्टडी होनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड आता है फ्रेंड्स, वो नो डाउट कि वो आता है निवेश, पूंजी, कि अब पूंजी कहां से आएगी, राइट। तो ये जो पूंजी वाली बात है दोस्तों, तो ये पूंजी लगभग ये माना गया है कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, इतना होना चाहिए, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, राइट। अब ये पूंजी कहां से आएगी? तो देखिए, सीधी सी बात है कि जो स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या लोग या कुछ लड़कों का ग्रुप हो, लड़के लड़कियों का ग्रुप हो, वो फिर अपनी अपनी पूंजी उसमें लगाते हैं, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, 20 लाख, तो उससे अपना एक सिस्टम बना लेते हैं और उनके पास थोड़ी सी पूंजी आ जाती है। मतलब वो इतनी पूंजी उनके पास होनी चाहिए कि अगर उनका सामान नहीं भी बिक रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं भी आ रहा है, तो कम से कम वो 1.5-2 साल तक तो सर्वाइव कर सके, उसको चला सके। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यापार व्यवसाय आप तुरंत शुरू करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलना शुरू नहीं हो जाता है, सर्वाइवल टाइम होता है उसका, तो 1.5-2 साल तक तो आप सर्वाइव कर सके। और अगर आप तब तक सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर दूसरों से आपको फंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि फ्रेंड्स, ज्यादातर मामलों में ये इसके 3 जोखिम होते हैं कि आप सबसे पहले कैसे वस्तु की लागत कम करके दर्शकों में, उपभोक्ताओं में उसके प्रति उत्सुकता पैदा कर सकेंगे। अगला फिर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप कैसे पर्याप्त कस्टमर अपने लिए क्रिएट कर सकेंगे, और तीसरा फिर आता है कि कैसे आप पूंजी जुटाएंगे और सर्वाइव करेंगे। दोस्तों, अब हम आइए थोड़े से प्रैक्टिकल उस पर आते हैं, व्यवहारिकता में क्या है। देखिए, व्यवहारिकता में यह है कि 2014 में स्टार्टअप शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब इसके प्रति आकर्षण कम हो रहा है, जो चिंता का विषय है। आकर्षण कम इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से स्टार्टअप बहुत बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। आंकड़े वैसे तो बताते हैं कि 40% 50% स्टार्टअप फेल हो गए हैं, लेकिन इनफैक्ट जो इनफॉर्मल आंकड़े हैं उनका कहना है कि मुश्किल से 1-2% स्टार्टअप ही सफल हो पा रहे हैं, बाकी फेल हो रहे हैं। तो फेल क्यों हो रहे हैं मित्रों? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला तो यह है कि ये जो स्टार्टअप में जो लड़के लड़कियां आते हैं उनके पास बहुत अनुभव नहीं होता, वो बड़े उत्साह में होते हैं, जोश में होते हैं और शुरू कर देते हैं, बिना एक अच्छी प्लानिंग के वो शुरुआत कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। दूसरा यह कि पूरा का पूरा जो आर्थिक वातावरण बना हुआ है, इसमें देखिए हाई सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, हाई सैलरी, ऊंची से ऊंची तनख्वाह, तो ये खुद के लिए भी जो है मालिक के रूप में अपने लिए हाई सैलरी निर्धारित कर देते हैं, और जो दूसरे लोगों को जो एंगेज करते हैं उन्हें भी अच्छी खासी तनख्वाह देने लगते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आय होने से पहले ही वो दुनिया भर के खर्चों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनका जो सर्वाइवल ड्यूरेशन है वो काफी कम हो जाता है। खर्च इनके इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगरों में शुरू हो रहे हैं, गुड़गांव में शुरू हो, गुरुग्राम में शुरू होगा, दिल्ली में शुरू होगा, बेंगलुरु में शुरू होगा, बॉम्बे में शुरू होगा, बड़े बड़े शहरों में, और वहां हर चीज के खर्चे ज्यादा है। आप एक ऑफिस भी लेंगे तो उसका किराया बहुत ज्यादा है, बट नेचुरल की वहां जो आप सैलरी भी देंगे तो वहां के हिसाब से देंगे, वो सैलरी आप ज्यादा दे रहे हैं, जिंदगी की जद्दोजहद ज्यादा हो रही है, तो इससे फिर वो दब जाते हैं। मैं एक ऐसे स्टार्टअप को जानता हूं जो शुरू में जिसने बंबई में अपना काम शुरू किया, लेकिन बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर उसने अपना काम इंदौर में शिफ्ट कर दिया। इंदौर बंबई की तुलना में बहुत सस्ता शहर है, और अब वो फ्लरिश कर गया क्योंकि उसको बहुत जल्दी लग गया कि अगर मैं मुंबई में रहूंगा तो मेरे खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इंदौर में मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। और चूंकि सारी चीजें टेक्निकल बेस्ड होती हैं तो इसीलिए छोटी जगहों पर भी ये शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन वहां चलिए दूसरे तरह की दिक्कतें होती हैं, उन्हें कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल पाते तो अलग तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, तो यह भी एक रीजन है। फ्रेंड्स, एक और रीजन है जो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि चूंकि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है, आपने देखा कि वो इंटरनेट टेक्निकल टेक्निक पर बेस्ड है, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप नया रिसर्च लगातार करते रहें, नया रिसर्च करते रहें, नई नई चीजें अपने सर्विसेज में जोड़ते रहें। अगर नई चीजें नहीं जोड़ेंगे तो दूसरे लोग आकर के आपको ओवरटेक कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे। तो अब रिसर्च करने के लिए फिर जिन चीजों की जरूरत होती है वो आसान नहीं होता है। मित्रों, 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बता ही चुका हूं कि जब इनका स्टार्टअप थोड़ा सा छोटा होता है तब तो ठीक ठाक मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे उसका फैलाव शुरू होता है तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है क्योंकि उनके पास अनुभवों की कमी होती है। फिर अगर वो बाहर से लोगों को लेते हैं तो पता लगता है कि उससे उनका खर्च बहुत अच्छे मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बनती है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं वो अपने बिजनेस को बंद करने के लगभग लगभग करीब आ जाते हैं और उन्हें फिर हार मानकर बंद करना पड़ता है। मतलब एक डेटा है जो लेटेस्ट है, IBM का डेटा है। IBM ने अपने रिसर्च में ये बताया है कि भारत में फंड की कमी के कारण, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, फंड की कमी के कारण लगभग लगभग 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। ये डेटा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 50% मतलब 90% 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको फंड नहीं मिल पाते। देखिए, जो स्टार्टअप थोड़े से फ्लरिश करने लगते हैं उनको तो फंड मिल जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल करते हैं उनमें कोई भी पैसा लगाना पसंद नहीं करता है और उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो धीरे धीरे मजबूरी में जाकर के वो बंद उन्हें करना पड़ता है। तो फ्रेंड, सरकार इस पर विचार कर रही है कि वो कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकती है, कैसे टैक्स फ्री कम आप यूं कह लीजिए कि ऋण का धन उपलब्ध करा सकती है, उनकी आय पर कैसे टैक्स कम कर सकती है, इस तरह की डिमांड की जा रही है। अब आप देखिए कि आगे चल करके क्या होता है, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए कि सरकार अगर स्टार्टअप के लिए कुछ अलग से कदम उठाती है, कोई नई योजना लेकर के आती है, किसी नई नीति की घोषणा करती है, तो आप बकायदे उसे नोट कर लें, ध्यान में रखें और अपने उत्तरों में शामिल करें। तो दोस्तों, ये मैंने स्टार्टअप के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं। अब इसी के साथ ही अब आज के इस विषय को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।